श्रीमद् भगवद गीता यथारूप अध्याय 7 श्लोक क्रमांक 10 बीजम माम सर्वभूतानां विद्धि पार्थ सनातनम बुद्धिर् बुद्धि मतामस्मि तेजस तेजस्विनामहम्। हे प्रथा पुत्र, ये जान लो कि मैं ही समस्त जीवों का आदि बीज हूँ, बुद्धिमानों की बुद्धि तथा समस्त तेजस्वी पुरुषों का तेज हूँ। ये तो बहुत सुंदर है, क्योंकि हम लोग अपनी बुद्धि पर बहुत गर्व करते हैं, चाहे वो कम ही क्यों ना हो, कलयुग में तो बहुत अधिक नहीं है, लेकिन जितनी भी बुद्धि है, कोई भौतिक कार्य करने की, आध्यात्मिक कार्य करने की, कुछ भी करने की, ये समझ में आना चाहिए कि ये सब शक्ति भगवान से आ रही है। इसलिए अगर हम कुछ अच्छा करते हैं तो उसका श्रेय हमें भगवान को ही देना चाहिए, और अगर कुछ गलत करते हैं तो उसका श्रेय हमें खुद लेना चाहिए। ये सच्चे भक्त का लक्षण है। गलत करेगा तो उसका दायित्व तो स्वयं लेगा कि मैं कितना मूर्ख हूँ, अच्छा करेगा तो उसका जो श्रेय है वो गुरु गौरांग भगवान श्री कृष्ण को देगा। बहुत अच्छा है। और अन्यथा भी जो लोग भौतिक रूप से भी कुछ तेजस्वी हैं, तो उनके तेज से प्रभावित होने के बजाय हमें सोचना चाहिए कि ये भगवान का तेज है। और दूसरा, अगर कोई व्यक्ति तेजस्वी है और मैं उसे ईर्ष्या करता हूँ, तो इसका अर्थ ये है कि मैं भगवान से ईर्ष्या कर रहा हूँ, क्योंकि वो तेज उसका नहीं है, वो तेज भगवान का है। जैसे मेरे सामने एक ट्यूबलाइट है, तो ये स्पष्ट है कि ट्यूबलाइट जल रही है, लेकिन ट्यूबलाइट का जो रोशनी है उसका स्रोत है वो पावर हाउस है, ये व्यक्ति समझता है। तो कहेगा हाँ, ट्यूबलाइट से बहुत अच्छी रोशनी आ रही है। आ रही है, लेकिन इसीलिए आ रही है क्योंकि इसमें करंट पावर हाउस से आ रहा है। ये बात इंपॉर्टेंट है। तात्पर्य, कृष्ण समस्त पदार्थों के बीज हैं, कई प्रकार के चर तथा अचर जीव हैं। चर का मतलब होता है चलने वाले, तथा अचर का मतलब होता है स्थावर, ना स्टेशनरी, कहीं हिलते नहीं है। पक्षी, पशु, मनुष्य तथा अन्य सजीव प्राणी चर हैं। पेड़ पौधे अचर हैं, वे चल नहीं सकते, केवल खड़े रहते हैं। प्रत्येक जीव 84 लाख योनियों के अंतर्गत है, जिनमें से कुछ चर हैं और कुछ अचर। एक बात मैं आपका ध्यान आकृष्ट करना चाहूंगा कि ये कैसे मालूम चलेगा कि 84 लाख योनि में है, क्योंकि शास्त्र में लिखा है। इसको हम बैठ के गिनते नहीं है कि 84 लाख योनि है कि नहीं है। पद्म पुराण में इसको बताया गया है और उसको भक्त लोग वैसे ही स्वीकार कर लेते हैं। और इसमें जब बताया गया है कि मनुष्य की 4 लाख प्रकार की योनियां होती हैं, इसका अर्थ है 4 लाख प्रकार की चेतना से युक्त इंसान होते हैं। सबकी चेतना अलग अलग होती है, भले वो देखने में इंसान जैसे लगे, किंतु इन सबके जीवन के बीज स्वरूप श्री कृष्ण है। जैसा कि वैदिक साहित्य में कहा गया है, ब्रह्म यह परम सत्य वह है जिससे प्रत्येक वस्तु उद्भूत है। जन्मादि अस्यतः, रूपास को समझा रहे हैं कि जिससे सब कुछ आया है, तो ये ब्रह्म है। कृष्ण परब्रह्म यह परमात्मा है। ब्रह्म तो निर्विशेष है, किंतु परब्रह्म साकार है। निर्विशेष ब्रह्म साकार रूप में आधारित है, यह भगवद गीता में कहा गया है, ब्रह्मणो ही प्रतिष्ठा हम। अतः आदि रूप में कृष्ण समस्त वस्तुओं के उद्गम है, वे मूल है। जिस प्रकार मूल सारे वृक्ष का पालन करता है, उसी प्रकार कृष्ण मूल होने के कारण इस जगत के समस्त प्राणियों का पालन करते हैं। बहुत सुंदर बात है। देखिए, पेड़ की जड़ काफी इंपॉर्टेंट है कि हम लोग बहुत ज्यादा पढ़ने के बजाय हम उसको ग्रहण करें कि जो हमने पढ़ा है उसको कितना समझ पा रहे हैं। बहुत इंटरेस्टिंग है, मूल वाली बात देखिए कि पेड़ की जड़ जो है वो दिखाई नहीं पड़ती है ना, लेकिन उस जड़ से सारी पत्तियों को पोषण मिलता है। उसी प्रकार से भले आपको भगवान यहाँ पे दिखाई नहीं पड़े, लेकिन भगवान की ही वजह से हम सबको, हम लोग जी रहे हैं, हम लोग, हमारा पालन हो रहा है, हमारे भोग की सामग्री मिल रही है, ये व्यक्ति को समझ में आना चाहिए। तो कोई छोटा बच्चा कहेगा कि पेड़ अपने शक्ति से खड़ा है, लेकिन बुद्धिमान व्यक्ति समझता है कि वो जड़ है, जो भले दिखाई ना पड़े लेकिन जड़ के द्वारा ही पेड़ सिंचित हो रहा है। और दूसरी एक और इम्पॉर्टेंट बात है कि जड़ कभी भेदभाव नहीं करती कि इस पत्ती को मुझे जल देना चाहिए, उसको नहीं देना चाहिए। तो सभी पत्तियों को पोषण मिलता है जड़ के द्वारा। तो सोचिए, जब भगवान उन जीवात्माओं को भी पोषण दे रहे हैं जो उनसे विमुख हैं, जो उनकी भक्ति नहीं करना चाहते, तो जो भक्ति कर रहे हैं उनके प्रति कितना अनुग्रह होगा। और इसी बात को भगवान गीता में आगे बताते हैं, समूहम सर्वभूतेषु नामे द्वेषस्ते न प्रिया ये तो भजन्ति माम भक्त्या मैते तेषु चाप्यहम। तो इस उदाहरण से आप समझ सकते हैं, जो भी दिया जा रहा है मूल वाला, कि मूल जो है वो सभी पत्तियों के प्रति समान भाव रखती है। तो उसी प्रकार से भगवान सभी जीवात्माओं के प्रति समान भाव रखते हैं, चाहे वो जीवात्माएं भले भगवान से द्वेष करें, लेकिन भगवान उनका भरण पोषण की व्यवस्था करते हैं। लेकिन भगवान ये भी कह रहे हैं कि जो उनसे प्रेम करता है, उनकी भक्ति करता है, तो उसके प्रति वो स्पेशल मित्र के रूप में कार्य करते हैं। तो ये भगवान का विशेष गुण है। और एक और बात है, प्रभुपाद इस बारे में समझाते हैं कि ऐसा नहीं सोचना चाहिए कि हम किसी का पालन कर रहे हैं, न तो हमारे बच्चों का, ना हमारे शिष्यों का या कुछ भी, हम किसी का पालन नहीं कर रहे हैं, पालन करने वाले भगवान हैं, हम केवल माध्यम हैं, फिर ओनली इंस्ट्रूमेंट्स इसे कहना चाहिए, हम माध्यम है लोगों के पास उनकी कुछ पालन पोषण कुछ भी करने के लिए, तो इसके लिए श्रेय हमको नहीं लेना चाहिए। वो अलग बात है कि भगवान श्रेय देते हैं माता पिता को, गुरुजनों को, लेकिन हमें इसके लिए इसको श्रेय नहीं लेना चाहिए, ये समझ में आना। और हाँ, श्रेय नहीं लेना चाहिए, दूसरा देने में कोई हिचकिचाहट नहीं होनी चाहिए। अगर भगवान की कृपा से आपके पास धन है तो दूसरे जीवों की सहायता करना चाहिए ताकि वो भगवान के पास आ सके। अगर आपके पास ज्ञान है तो आप भगवान के बारे में दूसरों को समझाइए। अगर आप गा सकते हैं तो कीर्तन गाइए ताकि लोगों को भगवान के प्रति आकर्षण हो। या अगर आप खाना बनाना जानते हैं और आपके पास धन है तो सुंदर सुंदर प्रसाद बना करके भगवान का प्रसाद सबको वितरण करिए। तो कहने का अर्थ ये है कि ये समझते हुए कि ये सारी वस्तुएं कुछ समय के लिए मेरे पास हैं तो इनको मैं दूसरों के कल्याण में उपयोग करूंगा, लेकिन कृष्ण के संबंध में ये ध्यान रखना चाहिए। इसकी पुष्टि वैदिक साहित्य में हुई है, नित्यो नित्यानाम चेतनस चेतनानाम एको बहुनाम यो विदधाति कामान। वे समस्त नित्यों के नित्य हैं, वे समस्त जीवों के परम जीव हैं और वे ही समस्त जीवों को पालन करने वाले हैं। मनुष्य बुद्धि के बिना कुछ भी नहीं कर सकता और कृष्ण भी कहते हैं कि मैं ही समस्त बुद्धि का मूल हूँ। जब तक मनुष्य बुद्धिमान नहीं होता वह भगवान कृष्ण को नहीं समझ सकता। तो इस श्लोक को हमने पहले भी चर्चा किया है कि हम सभी जीवात्माएं नित्य हैं, शाश्वत हैं, लेकिन हमारा एक लीडर है जो कि वो नित्य है और वो है भगवान श्री कृष्ण। हम सभी लोग चेतना से युक्त हैं लेकिन भगवान सर्वोपरि सर्वव्यापक चेतना से युक्त है। हमारी चेतना केवल शरीर में व्याप्त है लेकिन भगवान की चेतना पूरे ब्रह्मांड में व्याप्त है, वो सब कुछ जानते हैं। जैसे हम अपने शरीर के सुख दुख के बारे में जानते हैं, ऐसे भगवान इस जगत के, इस ब्रह्मांड के चप्पे चप्पे के बारे में जानते हैं। और क्या कर रहे हैं, केवल जान रहे हैं या कुछ करते भी हैं? तो कह रहे हैं एको बहुनाम यो विदधाति कामान, अकेले भगवान ही सभी जीवात्माओं की इच्छा कर रहे हैं, पूर्ण कर रहे हैं। और ये इंपॉर्टेंट बात है कि सारी जीवात्माएं मिलकर भी एक जीव की इच्छा पूर्ण नहीं कर सकते। जैसे मान लीजिए कोई व्यक्ति मर जाए तो पूरी दुनिया मिलकर के भी उसको जागृत नहीं कर सकती, लेकिन भगवान अकेले ही सबको जिला रहे हैं, खिला रहे हैं। तो ये देखना चाहिए कि भगवान का उपकार देखना चाहिए और फिर सोचना चाहिए कि मुझे ऐसा कुछ जरूर करना चाहिए जिससे भगवान संतुष्ट हो। और भगवान इस बात को बोल रहे हैं भगवद्गीता में कि किससे संतुष्ट होते हैं, वो कहते हैं कि जो इस भगवद्गीता के ज्ञान को दूसरों को देता है यथारूप में, तो उससे बड़ा सेवक मेरा कोई नहीं है और इससे वो भगवान पूरी तरह संतुष्ट होते हैं। लेकिन अब लोगों को समझ में कैसे आएगा भगवद्गीता का ज्ञान, जो वो हरे कृष्ण मंत्र जप करेंगे। तो लोगों को प्रेरणा देना चाहिए, हरे कृष्ण मंत्र जप करें, भगवद्गीता पढ़ें और भगवद्गीता के सिद्धांतों के अनुसार अपना जीवन यापन करें, तो इससे सामने वाले को भी सुख मिलेगा और भगवान की असीमित अनुकंपा हमारे ऊपर होगी। एक इंटरेस्टिंग बात है कि जब मनुष्य बुद्धिमान नहीं होता तो भगवान कृष्ण को नहीं समझ सकता। तो बुद्धिमान होने का अर्थ क्या है? बुद्धिमान होने का अर्थ ये है कि व्यक्ति बहुत पढ़ाई में ऊंचा लिखा पढ़ा, बहुत अच्छे से पढ़ाई करता हो, बहुत अच्छे नंबर आते हो, नहीं। बुद्धिमान होने का अर्थ है श्रद्धा से युक्त, और ये इतनी बुद्धि आ जाए कि भाई भगवान को मैं अपनी शक्ति से नहीं समझ सकता, जो भगवान गीता में बोल रहे हैं उसको मैं यथारूप स्वीकार कर लूं, और अन्यथा अधिक बुद्धि लगा करके भगवान की बातों में अविश्वास करेगा तो भगवान को नहीं समझ पाएगा। तो इसलिए हमें बुद्धिमान होकर के जैसे भगवान भगवद्गीता में बोल रहे हैं वैसे ही हमको स्वीकार करना चाहिए और तब हम भगवान को समझ पाएंगे। एक और इम्पॉर्टेंट बात है कि जब कोई व्यक्ति भगवान की भक्ति नहीं करना चाहता तो वस्तुतः वो भगवान से कॉम्पिटिशन करना चाहता है, तो ऐसी स्थिति में भगवान उस पर कृपा नहीं करते हैं। जब व्यक्ति स्वीकार करता है कि भगवान मैं तो मूर्ख हूँ, मैं तो बहुत पतित हूँ, तो यही योग्यता है, क्योंकि तब भगवान अपनी कृपा उसके ऊपर करते हैं और फिर वो भगवान को समझ पाता है। अन्यथा भगवान को समझना हमारी शक्ति के बियॉन्ड है, समझ नहीं सकते। हरे कृष्णा।